بسم اللہ الرحمن الرحیم. یہ سیاسی سوال ہے اور اچھا سوال ہے. میں شاید زیادہ اس کا جواب کا متحمل بھی نہیں ہوں. البتہ یہ کہ بنیادی چیزیں جو ظاہر سی ہیں وہ یہ ہے کہ ہدف پاکستان، مقصد پاکستان، جب ہم دیکھتے ہیں کہ خدا داد مملکت جو کہی جاتی تھی اور کہی جا رہی ہے، اللہ نے حقیقت میں بہت بڑی نعمت عطا کی ہے، اور اس نعمت کو اگر ہم شکر ادا نہ کریں تو اس کے سلسلے میں یہی ہے کہ جب کسی نعمت کا شکر ادا نہیں ہوتا تو اس کے کانسیکوینسز کو بھی جو ہے بھگتنا پڑے گا. پہلے نعمت کی معرفت اور منعم کی معرفت اور منعم کی معرفت، جو نعمت لے رہا ہے اس کو معلوم ہونا چاہیے کہ کون سی بڑی نعمت ہے، کتنی بڑی نعمت ہے، اور جو جس نے کروایا ہے اس کو بھی بتانا چاہیے کہ یہ کون سی نعمت ہے. جمہوری اسلامی پاکستان میں جو میں نے ابتدا میں 20 سال پہلے بھی کراچی کے پہلے سال کے مجلس میں نے عرض کیا تھا کہ جب میں نے پہلا ویزا لیا ہے اسلامک ریپبلک آف پاکستان، جب میں نے ویزے میں دیکھا تو آئی واز سو انوسنٹ. میں معلوم نہیں تھا کہ اسلامک ریپبلک بھی ہے، میں پاکستان سے ہی واقف تھا، اتنا میں نائیو تھا. تو اس سے اندازہ ہوتا ہے کہ میں نے مثال پیش کی ہے، اور امید ہے کہ یہ مثال سب کے لیے ہے. میرے بچے کا نام میں نے احمد یا محمد رکھ دیا. اس کو میں نے نہ کلمہ سکھایا، نہ صلوات، نہ نماز، نہ روزہ. اور 20-25-50-60 سال کے بعد کیا ہوگا؟ اسی طرح سے ایک کنٹری بھی ہے. ایک کنٹری کو اگر آپ نے اسلامک ریپبلک کہہ دیا، اگر اسلام کے قوانین اس پر جو لازمی ہے لاگو نہیں کیا، پہلے تو قوۂ مقننہ میں اتنی قوت ہونا چاہیے کہ دین کے لیے بنائی گئی چیز ہے اور یہ دین ہی کے لیے چلنا چاہیے. میں آپ کو تقابلی مقابلے کے طور پر نہیں کہوں گا، بلکہ میرے پاس کوئی اور مثال نہیں ہے. اسلامک جمہوریہ اسلامی ایران میں انہوں نے انقلاب کے ساتھ ہی جو سب سے بڑے اقدامات کیے ہیں وہ ایجوکیشن اور مغربی دنیا کے جتنے بھی اثرات ہیں اس سے جھاڑو سے صفائی کر دی، اور کر رہے ہیں مسلسل. اگر یہ نہیں ہوگا تو وہی ہے کہ جو ہیں پیدا تو ہو گئے ہیں، نیچرل سٹیزن شپ تو مل گئی ہے، لیکن ریئل سٹیزن شپ حاصل نہیں ہے. یہاں پہ آج اٹھا کر دیکھیے ہمارے پاکستان کے قوانین کو اور کورٹ کے قوانین کو، حتیٰ وہ ٹرمنالوجیز بھی جو موجود ہیں وہ بھی ہمارے پاس ان کی دی ہوئی چھوڑی ہوئی چیزیں ہیں. ابھی تک اس کو ہم نے اصلاح و صحیح نہیں کیا ہے. اسلامائز تو کرتے ہیں ہم لوگ، مگر اسلام نہیں کیا ہے. اسلامائز کر دینا اور ہے کہ کیک کٹنا تھا بچے کی پیدائش کا، اور سب کاٹنے کے بعد تکبیر پڑتی تو وہ اسلامائز کر دیا ہم نے برتھ ڈے کو، لیکن وہ مسلمان بچہ ہے یا نہیں ایک سوال ہے. تو میں سمجھتا ہوں کہ جس مقصد کے لیے پاکستان بنا اور جس دلجوئی سے ابتدا میں کام ہوا، اگر اس کو صحیح ایکسپینڈ کیا جاتا، صحیح اس کی رہنمائی ہوتی ہمارے مدرسوں میں، ہمارے کالجز میں، ہمارے یونیورسٹیز میں، اور اس کے اہداف کو بیان کیا جاتا، اہداف کو تبعین کی جاتی، اور اس پر کام ہوتا، تو شاید عوام بھی اس سے واقف ہوتے. اگر آپ سڑک میں چلنے والے کسی بھی پاکستانی مسلمان سے پوچھیں یا ایک سٹیزن سے پوچھیں کہ آپ کے یہاں کے قانون سے آپ واقف ہیں یا نہیں، کل میں نے تقریر میں بھی اشارہ کیا تھا، شاید کانسٹیٹیوشن سے میجارٹی ہم واقف ہی نہیں کہ کانسٹیٹیوشن لکھا کیسا گیا ہے کیا ہے. جب ہمیں معلوم ہی نہیں ہے کہ ہمارا خط استوا کیا ہے، ہم لوگ کس خط پہ چل رہے ہیں، تو اس پر عمل کیا کریں گے؟ تو میں سمجھتا ہوں سب سے بڑا جو چیلنجنگ ٹاسک رہا ہے اور رہے گا وہ ہے تبعین ہدف پاکستان. مقصد کیا ہے بیان ہونا چاہیے، اور اس کا ہدف جو ہے ابھی تک نہ ہی تبعین ہوا ہے. جب تبعین ہی نہیں ہوا، بیان ہی نہیں ہوا، تو عمل کا تو بات مسئلہ جو ہے کچھ اور ہی رہے گا. عوامی بیداری کی لہر تو ہے، مگر اس کو ڈیفیوز کر کیا جاتا ہے. میں آپ کو مثال دوں گا، 2 سال پہلے ایک تحریک چلی آکیوپائی وال اسٹریٹ، اس میں جو پلے کارڈ جو ڈسپلے ہوئے ہیں وہ خوبصورت ہیں، وہ ابھی بھی وہی ہے، ثابت بھی ہے. 99% اگینسٹ 1%، जो हमारा चैलेंजिंग टास्क है मुसलमानों का जो मग़रिब में रहते हैं कहीं भी रहते हैं, वो है इमाम सादिक अलैहिस्सलाम की हदीस है कि आलिम बेज़माने ही ला तहजुम अलैहिल लवाबिस, अवेयरनेस ऑफ द टाइम, आलिम के माने अमामा पहनने वाला ही नहीं है बल्कि जो भी प्रोफेशन रखता है उससे अवेयर होना चाहिए, ज़माने से अवेयरनेस बहुत ज़रूरी है। आज मालूम है कि अमेरिकन इकोनॉमी जिसके हाथ में पूरी इकोनॉमी चल रही है वो 1% है, और 99% के पास वो इकोनॉमी मौजूद नहीं है। जो 99% के पास है वही इकोनॉमी 1% के पास है। तो इतना जो तवाज़ुन जो आप बिगड़ा हुआ है, तो जाहिर सी बात है कि वो 1% अपनी दौलत के सहारे से जिसको चाहे जैसे चाहे वो अपने सोशल नॉर्म को चला सकता है। चुनांचे वॉल स्ट्रीट मूवमेंट को जो सबसे बड़ा जो इन्हें धक्का लगा है उसकी वजह कि कोई लीडरशिप नहीं मिली उनको। आवाज़ बेहतरीन आवाज़ थी, मोमेंट सही थी, सब कुछ चल रहा था, लेकिन उसको डिफ्यूज़ करना, चूँकि उनके पास 1% के पास दौलत भी है हुकूमत भी है, वो लोगों ने उसको डिफ्यूज़ किया। मगर मैं नहीं समझता कि डिफ्यूज़ होने वाला है, इसलिए कि जुल्म जो है आप चंद जमाने तक दबा सकते हैं मगर लंबा चलने वाला नहीं है। अभी भी कभी भी अभी हाल ही में गुज़श्ता महीने आपने वो एक ब्लैक ब्रदर का किस्सा सुना है जिसकी वजह से एक हंगामा शुरू हुआ। ऐसे किस्से कभी कभी पॉपअप होते हैं, ज़ाहिर होते चले जाते हैं। वो क्यों हैं? जो इंसान के उगदे जो मौजूद हैं अंदर, वो उभरना एक ना एक दिन ज़रूरी है। इस सिलसिले में जो मुसलमानों को काम करना चाहिए था, जो इस्लामी मसाजिद हैं, इस्लामी सेंटर्स हैं, उन्होंने भी वो काम नहीं किया, इसलिए कि हम लोग जो भी गए हैं, जैसे मैं हूँ कनाडा में, मैं इन्फीरियर बन के गया हूँ, मैं एज ए रेफ्यूज समझा हूँ, जिसको रेफ्यूज के माने हैं, जैसे मैंने अभी हाल ही में खुतबे जुमा में मैंने अर्ज़ किया था औज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम के माना क्या है। माना यह है कि मैं समझता हूँ कि ये दुनिया मुझे पनाह नहीं दे सकती, एक ही पनाहगाह मेरी ज़ाते परवरदिगार है, उसकी पनाह में मैं जा सकता हूँ। तो अगर ये मैं मानता हूँ कि वो मालिकुल मुल्क है, तो तिल मुल्क का मंतशा हो, तंज़ुल मुल्क का मंतशा हो, तो इज़्ज़त मंतशा हो, तो दिल मंतशा हो, बेदिकल खैर, सब कुछ उसके हाथ में है। अगर मुझे पूरा अकीदा है तो मैं उसकी ममलिकत में चले जाऊँगा। कब? मुझे पूरी मालूम है कि वही मुझे प्रोटेक्ट कर सकता है। आज हमारी बदबख्ती है, चुनाचे इन हालात में जो पाकिस्तान हिंदुस्तान सारे दुनिया मुसलमानों के जो हालात हो रहे हैं, इन हालात में जो है हम लोग रेफ्यूज बन के जा रहे हैं वहाँ पर। तो इसके माने कि सबसे पहली जो मेरी बदबख्ती, मैं जो पहुँचा हुआ हूँ, उनको मुझे मैं एआद समझता हूँ, मेरा माँ समझता हूँ, मेरी मददगार समझता हूँ, वो ममलिकत वो है जो मेरी इज़्ज़त को, मेरी दौलत को, मेरे माल को, मेरे बीवी बच्चों को हिफाजत दे सकती है। ये इन्फीरियर कॉम्प्लेक्स जिसको कहते हैं एहसास कमतरी ही जो है मुसलमान को वहाँ पर जैसे कि काम होना चाहिए नहीं हुआ। यकीनन इस्लाम जो है चूँकि फितरत इस्लाम में फैला हुआ है, इसको कोई नहीं रोक सकता। मैं अभी हाल ही में एक जुमला कहा था, मानवियात में आज भी इस्लाम सुपर पावर है। इतनी बेनवा नमाज में भी आज इतनी कुव्वत है कि जब इंसान गैर देखता है तो इसमें अट्रैक्शन ज़रूर महसूस होता है। क्योंकि इस्लाम में फितरतन अल इस्लाम यालू वला युलाल है, इस्लाम खुद ब खुद बुलंद होता है, उसको बुलंद करने की ज़रूरत नहीं होती। अगर हम लोग काम करेंगे तो टर्बो का काम होगा, बहुत जल्दी तेज़ी से बढ़ेगा। तो अगर हम खुलासा करें आपके सवाल का जवाब, यस तहरीकें चल रही हैं, मगर जैसे कि चलना चाहिए, जैसे कि इसको स्पीड अप होना चाहिए। बेहतरीन मौका था इस 2 साल के अंदर वॉल स्ट्रीट मूवमेंट के साथ, चंद मुसलमानों ने साथ दिया, लेकिन उसके साथ खुसूसन मोमिनीन को चाहिए था जितनी गहराई से इसका मुतालिया करते, साथ देते, तो बहुत ज़्यादा उसके पॉजिटिव असरात होते थे। इस सिलसिले में तहरीक है मगर ना होने के बराबर है। उसकी वजह यह है कि दुश्मन के पास लीडरशिप है, दुश्मन की विलायत को हमने कबूल कर लिया है। अल्लाह वलीयुल्लज़ीन आमनू युख्रिजुहुम मिनज़ुलुमाति इलन्नूर वल्लज़ीन कफरू औलियाउहुम अत्तागूत युख्रिजूनहुम मिनन्नूरि इलज़ुलुमाति उलाइका असहाबुन्नारि हुम फिया खालिदून। अगर हम मिस्र के सामने की बात है, अभी हाल में जो हुआ, जो रेवोल्यूशन हुआ, जो फिर 40 ईयर्स पहले जो हालत थी उस हालत तक ले जा करके खड़ा कर दिया, उसको ज़रा सा एनालाइज करेंगे तो पता चलेगा कि इसके पीछे जो सबसे बड़ा जो बदबख्ती का जो आलम है वो है, एक तो अवेयरनेस नहीं है मुसलमानों के पास, तालीम नहीं है। इनकलाब जमहूरी इस्लामी का तुर्रई इम्तियाज़ ये रहा है कि 13 साल की क़याम में नजफ में इमाम खमीनी रहमतुल्लाह ने जो प्लान बनाया ईरान के लिए वो है बेदारी मोमिनीन की, तालीम याफ्त यानी तालीम देना दीन की। शाह का ज़माना था, जिस ज़माने मैं पढ़ रहा था शाह के ज़माने में कौम में, हमारे साथी जो ईरानी कॉलिग थे रमज़ान में वो जाते थे, हत्ता दर्स पढ़ने की पढ़ाने की इजाज़त नहीं थी, लेकिन लोग जाते थे दर्स क़ुरान के उनवान से, हम अलिफ ज़बर आ बे ज़बर बा ये पढ़ाएंगे दर्स क़ुरान, उस दौरान वो चीज़ें पढ़ाते थे जो पढ़ाना लाजिमी था। तो ये 13 साल से आगा ने जो कहा था कि मेरे मददगार जो है माँ की गोदों में हैं, हकीकत में ऐसे नहीं था, उन्होंने बाकायदा प्लान बनाया था कि 5 साल के बच्चे पे काम हो, और 13 साल होगा तो 18 साल का बच्चा जब बाहर आएगा मैदान में उसके सामने दीन जो है वाज़े रहेगा, फिर उस दीन को कोई दबाने की कोशिश नहीं कर सकेगा। इस तरह की तहरीकें जो हैं, यकीनन बेदारी तो ज़रूर है, आज भी बेदारी है, लेकिन उनके लिए एक मददगार, एक रहबर, एक विलायत उसके पास मौजूद नहीं है जिसकी बात सुन। चुनाचे आपको मुर्सी के बाद जब यहाँ से 20 नुकाती प्रोग्राम ईरान ने भेजे थे, अगर इस पर अगर आप अमल करेंगे तो आपकी हुकूमत भी बाकी रहेगी, और हमारा ये तजुर्बा है 35 साल का, आप लोग इस पर कोशिश करें। मगर उन्होंने वो एक समझे कि ये चीज़ें आती रहती हैं, उसको कहीं फेंक दिया, और चंद ही दिनों में 8-10 दिन के अंदर पूरी दुनिया उलट के रख दी। इसके पीछे सबसे ज़्यादा जो काम कर रहा है वो विलायत तागूत है, वो उस विलायत तागूत को सबों ने कबूल कर लिया है, यानी जनरल पब्लिक ने उसको अक्नॉलेज कर लिया है कि ये क़ुव्वतें हैं, इसको शायद इसका मुकाबला हम नहीं कर पाते। लेकिन इनकलाब जमहूरी इस्लामी ईरान में बाकायदा बताया गया कि तमाम क़ुव्वतें कितनी क्यों ना हों, लेकिन अगर आप एक कदम बढ़ाएंगे आपकी कामयाबी है। क्यों कामयाबी है? कि अल्लाह ने वादा किया, वल्लज़ीना जाहदू फीना लनहदियन्नहुम सुबुलना। अब ट्यूनिस का मसला देखिए, अगर उस मसले में के बाद जो लोग करता धरता, जो लोग मोमेंट चलाए थे, अगर वो मुनज़्ज़म हो जाते और उन उस तहरीक को अवामी तहरीक बनाते तो शायद उनकी कामयाबी यकीनी थी। और इसी तरह से मिस्र के इनकलाब को अगर अवामी तहरीक बनाया जाता और इसको बाकायदा टीच किया जाता, हर घर में इस आवाज़ को बुलंद किया जाता, तो दो चार यकीन 1 लाख मरते, लेकिन एक बाइज़्ज़त मरते, उसके साथ हाथ में बड़ी क़ुव्वत होती। मिस्र में 20 बिलियन खर्चा दिया गया सऊदी अरब की तरफ से, और 20 बिलियन जाहिर सी बातें जब आएंगे तो एक बड़ी रकम है एक ऐसी गरीब कंट्री के लिए। और लीडर्स जो उसके, पूरी फ़ौज खरीदी गई सिर्फ इसलिए कि सिर्फ और सिर्फ हिफाजत करना है इसराइल की। ये दो तवाज़ुन हम जब देखते हैं कि विलायत तागूत के सुनने वाले मौजूद हैं, विलायत ज़ात परवरदिगार के सुनने वाले वहाँ बहुत कम है, उस पर काम नहीं हुआ जिसकी बिना पर फेलियर हो गई। और हमारा नज़रिया ये है कि एक दिन सबको इस विलायत के अंदर आना ही पड़ेगा, वही एक रास्ता है जिसको विलायत ज़ात परवरदिगार कहते हैं। अगर इस रास्ते पर आ जाएंगे तो उनको कामयाब यकीन है। चुनांचे साबित किया ईरान ने, हत्ता इस मुज़ाकरात में साबित किया कि हमारे साथ तुम मार देंगे, कत्ल कर देंगे, तुम्हारे कंट्री को अटैक करेंगे, ये बातें मत करो। बात करना तो टेबल पर बैठो आपस में एज ए इक्वल पार्टनर, आँख में डाल के बात करो, उसके बाद हम गुफ्तगू करेंगे। चुनाचे बाइज्ज़त आज वो कंट्री उभर रही है और उभरती रहेगी, इसलिए कि वायदा परवरदिगार है इंशाल्लाह, जिसलिए कि वहाँ पर जो तहरीक जो चलाई जा रही थी उसको मुनज़्ज़म नहीं किया गया, नज़्म ज़ब्त उसको नहीं दिया गया, उसका निसाब नहीं लिखा गया, उसका हदफ नहीं लिखा गया। चीदा चीदा बाज ऐसे जो लोग, जिन लोग समझते थे जिनके इस्लामी हुकूमत यहाँ पर आ सकती है तो इस्लाम चल सकता है, वही लोग दाखिल हुए उनमें जो लोगों में शऊर था। लेकिन शऊर देना भी हमारा फरीज़ा था, इनका काम था कि अख़वानुल मुस्लिमीन इस बात का शऊर दे थी अवाम तक कि तुम लोग सो रहे हो, बुलंद हो, और बुलंद होकर के तुम्हारी तकदीर को तुम्हारे हाथों से लिखो। मैं समझता हूँ इस सिलसिले में फेलियर है, जिस तरह से उलमाए पाकिस्तान ईरान ने काम किया है इस 13 साल के अरसे में, वैसा काम होता तो फिर कभी हारने का सवाल नहीं होता था। तो मैं समझता हूँ तालीम नहीं दी गई जैसे देना चाहिए, और आज भी उसी की खौफ़ुदान है। जैसे पाकिस्तान में हालात। हमारा तो यकीन है कि वहाँ पर सिवाय कामयाबी के कोई और डरने की चीज़ नहीं है, यकीनन। इसलिए कि ये तहरीक हकीकत की तहरीक है, मेजॉरिटी तहरीक है, और इसको दराज मुद्दत तक दबाया नहीं जा सकता। अभी हाल ही में कई बिलियन 42+ या $50 बिलियन जो है ये फैमिली, रूलिंग फैमिली इसकी बहरीन की मुंतकिल की है, जो नोन पैसा है इसके लिए स्विट्ज़रलैंड को। इससे पता चलता है कि वो लोग नाउमीद होते चले जा रहे हैं इन हालात से। और ये जो तहरीक है, चूँकि अवामी बना दी गई है, अवामी तहरीक है, मुनज़्ज़म तहरीक है, यकीनन उसको दबाने की कोशिश की जा रही है दौलत के ज़रिए से, बंदूक के ज़रिए से। वो दबने वाली नहीं है इंशाल्लाह, यकीन हमें तो कोई शक ही नहीं, आज नहीं कल ये मुसलसल चलेगी और किसी न किसी रुख पर यह कामयाब होगी। अगर नाज़म व ज़ब्त और मुनज़्ज़म और सलीक़े विलायत को सामने रखेंगे तो इसमें कोई शक नहीं कि वो लोग कामयाब होंगे, और होना भी चाहिए। इसलिए कि इतने जूते खा चुके हैं, इतना मार खा चुके हैं, उनके पास कोई रास्ता नहीं है कि अपने आप को मुनज़्ज़म करें। और मैं समझता हूँ तहरीक बाकायदा मुनज़्ज़म थी, इसीलिए यहाँ तक भी जो कामयाबी हुई है उनकी बाकायदा फ़ालियन कैफियत थी, फ़ाल थे, हैं, और यही चीज़ है इंशाल्लाह उनको कामयाब बाकी रखेगी, उसको कुछ कर नहीं सकेंगे। हालांकि अब जो है पूरी मगरबी क़ुव्वतें और ये जो दौलतमंद क़ुव्वतें, खुसन पड़ोसी क़ुव्वतें, सब उसको दबाने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन चूंकि अवामी तहरीक है, उस अवामी तहरीक में मेजॉरिटी मौजूद है, उसको कुचल देना मैंने समझता कि आसान है। ये जो ज़ैदी हैं, ये लोग हज़रत ज़ैद को जो है अपना इमाम मानते थे, और यकीनन अकायद शिया से तकरीबन करीब हैं, लेकिन बाज़ वक्त में इन्हराफ तो बहुत ज़्यादा है। जो नई नस्लें हैं, वो नई नस्लें जैसे जैसे उन्हें मालूमात होती चली जा रही हैं, वो बहुत तेज़ी से मकतब अहले बैत की तरफ आती चली जा रही हैं। अगर ये ना आते तो ये जो हौसी का भी जो बिगड़ा हुआ अकायद थे वो संभलने की कोई उम्मीद ही नहीं थी, जिसमें अंसारुल्ला ने और ये तहरीक ने बहुत काम किया है। ना सिर्फ एक तहरीक एज़ ए मोमेंट चलाई है, बल्कि अकायदी तहरीक भी उन्होंने काम किया है। इसलिए इंशाल्लाह उम्मीद है कि जी हाँ, मैं समझता हूँ ये खुद ये ख़त जो था ये इल्हामी चीज़ थी अल्लाह की तरफ से, इसमें कोई शक नहीं कि मदद थी। अगर ये ना होती तो शायद वो ख़त के कंटेंट, उसके मौजूआत, उसका मुहतवा इस बात की दलील है कि एक तो रहबरियत में वो फ़ालाना कैफियत, वो होशियारी ज़ात परवरदिगार की तरफ से अताशुदा चीज़ थी, जिसके बाद आज तक भी तमाम मगरबी ज़रा इबलाग उस पर बहस कर रही है मुसलसल, और उन्होंने समझ लिया कि इन्होंने अब नफ्स पर हाथ रखा है। खुसन दो पॉइंट्स को बयान करके, नंबर वन, मैं जवानों से गुफ्तगू कर रहा हूँ, इसके माने नहीं कि मैं तुम्हारे बुज़ुर्गों को और तुम्हारे पेरेंट्स को इग्नोर कर रहा हूँ, इसलिए कि तुम लोग मुस्तकबिल है। तो रहबर का, आगा का ख़त का फोकस जो है फ्यूचर है, नंबर वन। नंबर टू, जो बहुत ही अहम मसला है वो ये है कि मैं तुम्हारे स्टेट्समैन, तुम्हारे पॉलिटिशन से बात नहीं करना चाहता। क्यों? इसलिए कि वो लोग मोरल बॉर्डर्स को वो लोग क्रॉस कर चुके हैं, उनके पास कोई मोरालिटी मौजूद नहीं है। तो ये दो जुमले इतने हसास जुमले हैं जिसको जो लीडिंग पर्सनालिटीज़ हैं वेस्ट की समझ चुकी हैं, इसलिए कि वो जानते हैं कि उनकी पूरी सियासतों में ये दाग है ज़रूर कि कोई मेयार नहीं है। आज मेयार इज़राइल के लिए क्या है, आज मेयार दूसरी कंट्री के लिए क्या है, सामने वाज़ेह है। तो वो अखलाकी जो बॉर्डर जो रहबर ने बताए हैं उन्होंने क्रॉस कर लिए हैं। अवाम इस सिलसिले में अब जो है इस सिलसिले को समझने लगी है, और उस पर तस्करे खुद जो हैं कई दिन तक CNN जैसे TV में इस पर बहस होना, अगर हम बिलियंस ऑफ डॉलर्स खर्च करते तो दो मिनट के लिए सिर्फ आप एक ऐड दे सकते हैं, लेकिन दिनों हफ्तों इस पर गुफ्तगू होना, अखबारों में इसकी प्रचार होना, ये खुद एक इलाही निज़ाम है। परवरदिगार ये बताता कि मूसा के दरबार में, फिरौन के दरबार में मूसा निकालता ज़ात परवरदिगार। ये हमारी हिकमत है, अल्लाह की हिकमत। इसके असरात मैं समझता हूँ बहुत देर पा हैं और बहुत ज़्यादा इस सिलसिले में नई नस्लें जो हैं सोचते पर मजबूर हैं। अब ये जो पॉलिटिकल साइंस का से बहुत बड़ा एक चैप्टर है, इसने एक ऐसा रुख पेश किया है जिसके बाद उनको मजबूर होना पड़ता है कि इनकलाब जमहूरी इस्लामी ईरान को एज ए गाइडिंग फैक्टर माने, कोई दूसरा फैक्टर मान नहीं। दो चीज़ों को हम मिक्स ना करें, एक तो ये कि नशानियों को देख करके इंतज़ार ना करें, ये फ़लसफ़ा नहीं है। इंतज़ार करें ऐसे जैसे कल तशरीफ़ ला रहे हैं, अभी जुम्मा जो है इंशाल्लाह मौला आएंगे, तो क्या हम उस तरह से तैयार हैं? जब हम देखते हैं कि वो तैयारी हम में नहीं है, इसलिए कि अकीदा तो ज़रूर है लेकिन जो एक मुंतज़िर की तैयारी का जो सिलसिला होना चाहिए वो सिलसिला हमारे पास मौजूद नहीं था। मैंने कल मजलिस में इशारा करते हुए, अगर 100 के मजमे में, 1000 के मजमे में मैं पूछूं कि कुरान से कितना राबिता है हमारा, मैंने एक महफिल में अभी इंडिया में 400 बच्चे थे, उनसे पूछा कि नौजवानों की महफिल थी कि कितने हम लोग हैं जो कुरान पढ़ते हैं, तो एवरेज निकला 1%। ये पूरे वर्ल्ड की कैफियत मुसलमानों की वही है, ज़्यादा से ज़्यादा 2%, ज़्यादा से ज़्यादा 5%। जो कॉन्स्टिट्यूशन को ना समझता हो, इसलिए कि रसूलुल्लाह के ज़माने में कॉन्स्टिट्यूशन, सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने में कुरान था, मौला अली का कॉन्स्टिट्यूशन कुरान था, और कोई यही कुरान है कॉन्स्टिट्यूशन होगा इमाम ज़माना जल्लल्लाहु तआला, उससे अवेयरनेस अगर मैं ना हूँ तो मैं क्यों ये, अरे भाई फलां जगह ये हो गई निशानी, अब मौला आ रहे हैं। नहीं भाई, वो निशानी हो ना या हो, आज मौला आए तो क्या मैं उसके लिए तैयार हूँ? इस पर काम होना चाहिए, इस पर काम नहीं हो रहा है। मुंतज़िर की जो ज़िम्मेदारियाँ फ़ालियत, मैंने तकरीबन 18 जिम्मेदारियों को अपने वेब में भी डाले, अगर हुआ तो आप वो हमारे albayan14.com में देखिए और उसको भी पेश कर सकते हैं आवाम के नज़दीक। तो हम लोगों के पास बड़ी गर्दनों में जिम्मेदारियां हैं, हम लोग सिर्फ काउंट कर रहे हैं अब ये हो गया है इसलिए वो इमाम आ रहे हैं। अब चूंकि दुनिया में बहुत ज़्यादा खून बह रहा है, इमाम आ रहे हैं जी नहीं। जो बाज़ रिवायत ऐसे हैं कि लोग मैयतों के पहलू से गुजरेंगे, उनको एहसास भी नहीं होगा कि मैयत। तो अब मैं प्रिडिक्ट तो नहीं करना चाहता, हालात बहुत बुरे, बदतर से बदतर होने वाले हैं। उसकी वजह ये नहीं है कि निशानियाँ पूरी हो रही हैं, उसकी वजह है कि मुंतज़िर अपनी फ़ालियत को जैसे रखना चाहिए वो नहीं रख रहा। वो मुंतज़िर है, मैं मुंतज़िर हकीकी नहीं हूँ, मैं बिल्कुल एक एल्यूजन की दुनिया में ये तस्वुर में हूँ कि मौला आएंगे तो अच्छा होगा। ये भी गलत बात है कि मौला आने के साथ ही हमको लड्डू मिल जाएंगे, हम आराम से बैठेंगे, घर मिल जाएगा, जी नहीं। इमाम सादिक़ अलैहिस्सलाम ने फरमाया, मेरे फर्जन, हमारे फर्जन का इनकलाब उसी तरह से होगा जैसे हमारे जद रसूलुल्लाह का इनकलाब। अब लीजिए बेहतरीन मिसाल है, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब मिशन शुरू किया क्या आलम था, किस तरह से कौम बैठी हुई थी, किस तरह से हालत थी। तो मालूम हुआ कि वो पूरा प्रोसेस है इनकलाब का, इमाम के उससे सबको गुजरना पड़ेगा। उसके लिए मैं तैयारी नहीं हूँ, ना ही फिक्री तैयारी मेरे मुझ में है, ना ही अमली तैयारी मुझ में है। मुझे गन उठा करके बाहर निकलने की ताकत नहीं है जिस्मानी तौर पर, और फिक्री तौर पर जो है हमारे पास कोई इस तरह की